लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। धनी बनने के लिए परिश्रम मत करो, यह विचार मन से निकाल दो। तुम धन पर आंख लगाते हो तो वह लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पंख निकल जाते हैं, वह गरुड़ की तरह आकाश की ओर उड़ जाता है। कंजूस के यहां भोजन मत करो, उसके स्वादिष्ट व्यंजनों का लालच मत करो, क्योंकि वह वैसा ही है जैसा मन में सोच रहा है। वह तो तुमसे कहता है खा पी लीजिए, किंतु उसका हृदय तुम्हारे साथ नहीं है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 23वें अध्याय के 4 से लेकर 7 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह हमने इन्हीं पदों की व्याख्या से पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस तथ्य पर हम गौर कर चुके हैं कि 35 पदों वाला यह लंबा अध्याय इस चेतावनी के साथ शुरू होता है कि शक्ति, प्रतिष्ठा और संपत्ति की उपस्थिति में एक उचित पद छोड़ने का दबाव मजबूत हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को शासक द्वारा दी जाने वाली किसी भी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे स्थिति की सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही उसे धोखा खाने से बचा पाएगा। 23वें अध्याय के प्रथम 3 पदों में मुफ्त के भोजन से, पेटूपन से दूर रहने की सलाह दी गई है। वस्तुतः पेटूपन से तात्पर्य है किसी भी प्रकार के लालच से दूर रहना, अपने आप पर संयम रखना। शक्तिशाली लोगों के स्वादिष्ट और अच्छी तरह से तैयार भोजन से भरी मेज पर खाने का उदार निमंत्रण अच्छा लग सकता है, किंतु इसके पीछे शक्तिशाली का लक्ष्य है क्या, उसे जानना जरूरी है। उसके प्रति भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अमीर अथवा कथित बड़े लोग यूं ही आपको भोजन के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे। अमीर अपना उपकार मुफ्त में नहीं देते, वे बदले में कुछ चाहते हैं, और आमतौर पर यह उनके निवेश से कहीं अधिक होता है। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ का लेखक सचेत करता है, ध्यान रखो कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है, अथवा सत्ता और विलासिता के माहौल से अभिभूत और बहकावे में न आए, प्रलोभनों के प्रति सावधान रहें। श्रोताओं, अपनी भूख को रोकने में ही हमारा हित है, यानी खुद को संयम में रखना, नियंत्रित करना। वह व्यक्ति जो बुद्धि के मार्ग पर चलने की इच्छा रखता है, जो ईश नियमों के प्रति सत्यनिष्ठ होता है, वह ईश्वर के प्रेम से अपनी आंखों को रोशन रखे, क्योंकि ईश्वर उसके समक्ष सारी सुख सुविधाओं को रख देंगे। वह धोखे के भोजन से दूर रहे जो उसकी आध्यात्मिक उत्कृष्टता को छीन सकता है। इसके बाद 4 से लेकर 7 तक के पदों में भी लेखक सचेत करता है, कहता है धनी बनने के लिए परिश्रम मत करो, यह विचार मन से निकाल दो। तुम धन पर आंख लगाते हो तो वह लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पंख निकल जाते हैं, वह गरुड़ की तरह आकाश की ओर उड़ जाता है। यहाँ लेखक यही कहना चाहता है कि हालांकि कड़ी मेहनत करना निश्चित रूप से बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, तथापि हम हर हालत में धन के पीछे न भागें, धन प्राप्त करने के लिए नहीं जिए, क्योंकि धन हमारे जीवन को बहुत कमजोर और अस्थायी बना देता है। धन का लालच हमें विनाश की ओर ले जाएगा, क्योंकि एक न एक दिन धन गायब हो जाएगा। हमारे पास जो रहेगा वह है हमारा सच और सच पर आधारित हमारे सिद्धांत।
तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तू ही बल है मेरा, तू ही मेरी शरण शिला तू रक्षक गढ़ मेरा।
आगे 23वें अध्याय के 8 से लेकर 10 तक के पदों में मानव सूक्ति ग्रंथ का लेखक कारण बताता है कि मनुष्य को हर बात में संयम क्यों रखना चाहिए। कहता है, तुमने जो भोजन खाया उसे उगल दोगे और कंजूस से कही गई बातें व्यर्थ होंगी। मूर्ख को संबोधित मत करो, वह तुम्हारी ज्ञान की बातों का तिरस्कार करेगा। फिर कहता है, खेत का पुराना सीमा पत्थर मत हटाओ और अनाथों के खेत पर पैर मत रखो, क्योंकि उनका उद्धारक समर्थ है, वह तुम्हारे विरुद्ध उनका पक्ष लेगा। श्रोताओ, पहले 3 पदों में शासक की मेज एक खतरनाक जगह थी, लेकिन कंजूस की मेज भी ऐसी ही होती है जिसकी नजर उदार नहीं होती, वह बुरी होती है। कंजूस की मेज वाक्यांश का उपयोग ईर्ष्यालु या लोभी व्यक्ति के लिए किया गया है, जो सामने रखे हुए स्वादिष्ट भोजन को पसंद करता है और उसके परिणाम का ख्याल नहीं करता। इसके विपरीत एक उदार व्यक्ति होता है जिसकी नजर अच्छी होती है, जिसके हर काम के उद्देश्य भले होते हैं। कंजूस व्यक्ति अपने अतिथि से ऊपरी मन से कहता है, खाओ पियो, लेकिन उसके हृदय में और ही कुछ समाया होता है। वह नहीं चाहता कि आप उसकी मेज पर वास्तव में आनंद लें, क्योंकि वह अपने लिए अधिक खाना रखना चाहता है। किंतु यदि आप मूर्ख की तरह उसकी बातों में आ जाते हैं, तो इसमें आप ही का नुकसान है। वस्तुतः सूक्ति ग्रंथ का लेखक सचेत करता है कि कंजूस की मेज का अनुभव अप्रिय ही होगा, और जिस भोजन का आपने आनंद लिया वह आपको परेशान करने के लिए वापस आपके पास आता रहेगा। उनकी मेज पर बोले गए सुखद शब्द व्यर्थ प्रतीत होंगे, इसलिए ऐसी स्थिति के प्रति सावधान रहा जाए। भले ही आप ज्ञान की बातें करें, कंजूस और अमीर निमंत्रण देने वाले को इससे कोई मतलब नहीं होगा। वे आपकी ज्ञान पूर्ण बातों की सराहना नहीं करेंगे, न ही उस पर अमल करेंगे, बल्कि उन पर हंसेंगे, आपका तिरस्कार करेंगे। वह वैसी स्थिति होगी जिसका विवरण प्रभु यीशु मसीह ने किया था। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 6वें पद में हम पढ़ते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और मोती सुअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। तात्पर्य यही कि सुअरों को तो भोजन चाहिए, इसके बदले में यदि कोई उन्हें मोती खाने को दे तो वे अवश्य उस पर आक्रमण करेंगे। इसी तरह अयोग्य व्यक्तियों के सामने यीशु की शिक्षा यानी कि ज्ञान की बातें रखना भी व्यर्थ ही होगा। फिर लेखक अनाथों की बात करता है, जिन्हें दुख देना ईश्वर के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्ति को ईश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि ईश्वर हर समय दुर्बलों का पक्ष लेंगे। श्रोताओ, आम तौर पर अपनी संपत्ति रेखा के लिए एक पत्थर का निशान लगाना अपने क्षेत्र को सुरक्षित करना होता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति इस पत्थर को हटाकर अपने क्षेत्र को बड़ा बनाने और अपने पड़ोसी से चोरी करने का एक तरीका मान लेता है तो वह गलत करता है। प्रतीकात्मक रूप से प्राचीन मील का पत्थर पूर्वजों से चली आ रही एक परंपरा या प्रथा थी। इसी के संदर्भ में सूक्ति ग्रंथ के लेखक ने यह उदाहरण दिया है। विशेष रूप से लेखक अनाथों की रक्षा की बात करता है। यहाँ अनाथों से तात्पर्य विश्व के समस्त दुर्बल लोगों से है। विश्व में व्याप्त निर्धनों, बेरोजगारों, बेघरों, निराश्रितों, आप्रवासियों और शरणार्थियों से है, जो अन्यों की उदारता पर निर्भर रहते हैं। इनकी रक्षा करना प्रत्येक का दायित्व है। यदि हम इस दायित्व का निर्वाह नहीं करते तो हम ईश्वर को अप्रसन्न करते हैं। श्रोताओ, यह शिक्षा प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि ईश्वर हमेशा कमजोर लोगों का पक्ष लेते हैं, निर्गमन ग्रंथ के 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, इसराइलियों के पक्ष में प्रभु कहते हैं, मैं प्रभु हूँ, मैं मिस्रियों की दासता से तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूंगा और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा।
तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तू ही बल है मेरा, तू ही मेरी शरण शिला है, तू रक्षक गढ़ तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तू ही बल है मेरा, तू ही मेरी शरण शिला है, तू रक्षक गढ़ मेरा, तुझे चाहता बस स्वामी।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार को संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में इटली के कार्तिक एक्शन दल के करीब 40,000 सदस्यों से मुलाकात की और उनसे कहा कि वे अपनी उपस्थिति और अपने कार्यों के माध्यम से सभी लोगों को दिखलाएं कि लोगों को अपनाने का रास्ता जीवन का रास्ता है। इताली कार्तिक एक्शन दल ने अपने लिए विषय चुना है खुले आलिंगन के साथ। संत पापा ने कहा, आलिंगन मानवीय अनुभव की सबसे सहज अभिव्यक्तियों में से एक है। व्यक्ति का जीवन एक आलिंगन से शुरू होता है, उसके माता पिता के आलिंगन से, जो स्वागत का पहला चिन्ह है। जीवन के शुरू से लेकर अंतिम क्षण तक कई लोगों से आलिंगन मिलते हैं, लेकिन सबसे खास आलिंगन ईश्वर का है, जो हमें सबसे पहले प्यार करते और हमें अपने करीब रखते हैं। संत पापा ने 3 प्रकार के आलिंगन के बारे बतलाया, आलिंगन जो गैप होता, आलिंगन जो बचाता और आलिंगन जो जीवन बदल देता है। संत पापा ने दल के सदस्यों से कहा, जिस उत्साह को वे आज व्यक्त कर रहे हैं, उससे हमारी दुनिया में हमेशा स्वीकार नहीं किया जाता, कभी कभी इससे बंद और प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। कठोर हाथ भाईचारा के वाहक नहीं रह जाते, बल्कि इनकार एवं विरोध, यहाँ तक कि हिंसक अविश्वास और संघर्ष की ओर ले जाते हैं। युद्ध के उद्गम में अक्सर अस्वीकृत आलिंगन होते हैं, जो पूर्वाग्रह, गलतफहमी और संदेह के साथ आगे बढ़ते और इस हद तक पहुंच जाते कि एक दूसरे को अपने शत्रु के रूप में देखने लगते हैं। और दुर्भाग्य से ये सारी चीजें इन दिनों हमारी नजरों के सामने हैं। तब संत पापा ने दल के सदस्यों से कहा कि वे अपनी उपस्थिति एवं अपने कार्यों के माध्यम से सभी लोगों को दिखलाएं कि आलिंगन का रास्ता ही जीवन का रास्ता है। मानवीय दृष्टिकोण से एक दूसरे को गले लगाने का मतलब है स्नेह, सम्मान, विश्वास, प्रोत्साहन, मेल मिलाप जैसे सकारात्मक और मौलिक मूल्यों को व्यक्त करना, लेकिन यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसे विश्वास के आयाम से जिया जाए। हमारे अस्तित्व के केंद्र में करुणावान ईश्वर का आलिंगन है, जो हमें बचाते हैं। भले पिता, जिन्होंने अपने आप को यीशु में प्रकट किया और जिनका चेहरा क्षमाशीलता, चंगाई, मुक्ति और सेवा में प्रकट होता है, उनकी प्रकाशना पौत्र यूखरिस्त में और क्रूस पर चरम बिंदु पर पहुंचती है, जब वे दुनिया की मुक्ति के लिए अपना जीवन अर्पित करते और अपने शत्रुओं को क्षमा कर देते हैं। संत पापा ने कहा, यह उदाहरण हमारे लिए है ताकि हम भी वैसा ही कर सकें। पोप फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार को हंगरी के राष्ट्रपति तमास सुल्योग से वैटिकन में मुलाकात की, जिन्होंने बाद में वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन और वैटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघर से भी मुलाकात की। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। वक्तव्य में कहा गया है कि वैटिकन राज्य सचिवालय में मुलाकात के दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय अच्छे संबंधों पर प्रकाश डाला गया, जहां हंगेरियन समाज के विकास के लिए कैथोलिक कलीसिया की प्रतिबद्धता की सराहना की गई। यूक्रेन, गजा और अन्य युद्धों का जिक्र करते हुए जो दुनिया को तबाह कर रहे हैं, पोप फ्रांसिस ने कहा, युद्धरत सभी देश कृपया युद्ध रोकें, बातचीत करने की कोशिश करें, शांति की तलाश करें। बातचीत से लाई गई शांति अंतहीन युद्ध से बेहतर है। संत पापा ने ये बातें एक साक्षात्कार में कही है।
संत पापा फ्रांसिस ने हंगरी के तीर्थ यात्रियों के एक बड़े समूह का स्वागत किया और लगभग एक साल पहले उनकी भूमि पर की गई प्रेरितिक यात्रा का स्मरण किया। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में हंगरी से आए करीब 1200 तीर्थ यात्रियों का स्वागत इन शब्दों में किया। मैं हंगेरियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष एंड्रास वेरेस, उपस्थित सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मसंघियों और सभी विश्वासियों का स्वागत करता हूं। मैं नागर अधिकारियों को बधाई देता हूं, विशेष रूप से हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुलेओग का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आपकी तीर्थ यात्रा हंगरी में मेरी प्रेरितिक यात्रा के एक वर्ष बाद हो रही है, जिसे मैं बहुत कृतज्ञता के साथ अपने हृदय में रखता हूँ। अपनी यात्रा को याद करते हुए संत पापा ने कहा कि पुलों और संतों के खूबसूरत शहर बुदापेस्ट में उन्होंने एक तीर्थयात्री के रूप में उनके साथ प्रार्थना की थी। उन्होंने हंगरी के संतों स्टीनो लैंडिस्टाओ, एलिजाबेता एमेरिको का उल्लेख किया और एक साथ यूरोप के लिए शांति स्थापित करने की इच्छा के लिए, युवा पीढ़ियों को युद्ध का नहीं आशा का भविष्य देने के लिए, कब्रों से नहीं पालनों से भरा भविष्य और दीवारों के नहीं भाइयों की दुनिया के लिए प्रार्थना करने को कहा। संत पापा ने कहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि युद्ध के कारण अपना देश छोड़ने वाले यूक्रेनी शरणार्थियों के प्रति आपका दिल खुला है और मैं समाज की परिधि में रहने वाले लोगों को एकीकृत करने के आपके प्रयासों की भी सराहना करता हूँ। संत पापा ने उपस्थित युवाओं को जड़ों के महत्व को याद दिलाते हुए कहा, मैं अब भी आपको अपने पहले की पीढ़ियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने दादा दादी और बुजुर्ग लोगों से बातें करें, जड़ों की तलाश करें, क्योंकि इस तरह आप भविष्य के लिए ठोस नींव रखेंगे। अपनी जड़ों की रक्षा करके आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। जीवन देने वाले मूल्यों, परिवार, एकता और शांति में खुद को मजबूत कर पाएंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने पिछले कुछ दिनों में रफाह पर इजरायली हमलों की श्रृंखला की निंदा की है, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं मारे गए हैं। उन्होंने उस क्षेत्र के पूर्ण पैमाने पर घुसपैठ के खिलाफ अपनी चेतावनी दोहराई, जहां 1.2 मिलियन आबादी शरण लिए हुए है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने विश्व नेताओं से राफाह में फंसे नागरिकों की रक्षा की अनिवार्यता पर एकजुट होने का आह्वान किया, जहां इसराइली बलों द्वारा किसी भी पूर्ण पैमाने पर सैन्य घुसपैठ से अधिक मौतों, चोटों और विस्थापन का खतरा होगा। बड़े पैमाने पर और भी अधिक अत्याचारपूर्ण अपराध, जिसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। मार्च में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तत्काल युद्ध विराम की मांग की थी। गाजा के अधिकारियों के अनुसार 22 अप्रैल तक गाजा में मारे गए 34,151 फिलिस्तीनियों में से 14,685 बच्चे और 9,670 महिलाएं थीं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।